ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। स्थानीय तह चुनाव अंतर्गत जारी मतगणना में अब तक 695 पालिकाओं का मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 307, नेकपा एमाले 188 और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 120 स्थानों पर विजयी। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड ने 5 दलीय सत्ता गठबंधन को बताया सफल। मकवानपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 अन्य हुए घायल। और मॉनसून से पहले भारत के कुछ राज्यों में आंधी और बारिश के साथ साथ आई बाढ़ और बिजली की चपेट में आने से 57 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। स्थानीय तह चुनाव अंतर्गत जारी मतगणना में अब तक 695 पालिकाओं के मत परिणाम सार्वजनिक हुए हैं। ताजा मत परिणाम के मुताबिक नेपाली कांग्रेस पालिका पदों पर 307 स्थानों में और उप प्रमुख पदों पर 281 स्थानों में जीत दर्ज कर पहले स्थान पर है। वहीं नेकपा एमाले 188 प्रमुख और 213 उप प्रमुख पदों पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी तरह नेकपा माओवादी केन्द्र को 120 प्रमुख और 125 उप प्रमुख पदों पर जीत मिली है और वो तीसरे स्थान पर है। वहीं जनता समाजवादी पार्टी 19 प्रमुख पदों पर जीत हासिल की है, जबकि नेकपा एकीकृत समाजवादी ने प्रमुख पद की 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अन्य को 52 प्रमुख और 47 उप प्रमुख पदों पर जीत मिली है। अब उप महानगर पालिकाओं के ताजा मत परिणाम सुनते हैं। अब महानगर पालिका के ताजा परिणाम सुनते हैं सहकर्मी मुकेश जी से।
काठमांडू महानगर पालिका से मेयर पद के स्वतंत्र उम्मीदवार बालेन्द्र शाह 35,751 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी केशव स्थापित नेकपा एमाले से 19,525 मतों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। इसी तरह पोखरा महानगर पालिका के मेयर पद के उम्मीदवार नेकपा एकीकृत समाजवादी के धनराज आचार्य 37,122 मतों के साथ अग्र स्थान पर हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के कृष्ण बहादुर थापा 33,850 मतों के साथ चल रहे हैं। इस तरह भरतपुर महानगर पालिका की मेयर पद की उम्मीदवार रेणु दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र से 29,675 मतों के साथ विजयी हो चुकी हैं। इसी तरह ललितपुर महानगर पालिका के मेयर पद के उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के चिरीबाबू महर्जन 27,242 मतों के साथ अग्र स्थान पर चल रहे हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के हरिकृष्ण व्यंजनकार 15,983 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसी तरह वीरगंज महानगर पालिका के मेयर पद के उम्मीदवार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राजेश मान सिंह 27,515 मतों के साथ अग्र स्थान पर हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विजय कुमार सरावगी 14,233 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसी तरह विराटनगर महानगर पालिका के मेयर पद के उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के नागेश कोईराला 30,170 मत प्राप्त कर विजयी हो चुके हैं। इसी तरह उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के सागर कुमार थापा को 21,455 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह महानगर पालिका के उप प्रमुख पदों की बात करते हैं। काठमांडू महानगर पालिका की डिप्यूटी मेयर पद की उम्मीदवार नेकपा एमाले की सुनीता डंगोल 26,575 मतों के साथ आगे चल रही हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एकीकृत समाजवादी के रामेश्वर श्रेष्ठ 8,591 मत अब तक उन्हें प्राप्त हुआ है। इसी तरह पोखरा महानगर पालिका के उपमेयर पद की उम्मीदवार मंजू देवी गुरुंग 38,576 मतों के साथ आगे चल रही हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कोपिला राणा भाट नेपाली कांग्रेस की 37,545 मतों के साथ चल रही हैं। इसी तरह भरतपुर महानगर पालिका के उपमेयर पद के उम्मीदवार चित्रसेन अधिकारी नेपाली कांग्रेस के 32,052 मतों के साथ अग्र स्थान पर है। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रप्रपा की हिमला गुरुंग 18,494 मतों के साथ चल रही हैं। इसी तरह ललितपुर महानगर पालिका उपमेयर पद की उम्मीदवार नेकपा एमाले की मंजली शाक्य वज्राचार्य 15,765 मतों के साथ अग्र स्थान पर हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा माओवादी केन्द्र के बाबूराज वज्राचार्य 10,834 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसी तरह वीरगंज महानगर पालिका के उपमेयर पद के उम्मीदवार इम्तियाज आलम 19,049 मतों के साथ अग्र स्थान पर हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के पुरुषोत्तम लाल झा 4,251 मतों के साथ चल रहे हैं। इसी तरह विराटनगर महानगर पालिका की उपमेयर पद की उम्मीदवार शिल्पा कार्की 25,680 मतों के साथ विजयी हो चुकी हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अमरेंद्र यादव को 14,219 मत प्राप्त हुए।
समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो पोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी बनौ, सुरक्षित एवं सुखद जीवन यापन गरौ।
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाकी समाचार। विराटनगर महानगरपालिका के प्रमुख पद पर नेपाली कांग्रेस के नागेश कोइराला निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 30,170 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह महानगरपालिका के उप प्रमुख पद के लिए नेकपा एमाले की शिल्पा कार्के निर्वाचित हुई हैं। कार्के को 25,680 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सप्तरी की बोदे बरसाई नगरपालिका के प्रमुख पद के लिए जनता समाजवादी पार्टी के आतिश कुमार सिंह यादव 5,693 मत प्राप्त कर विजय हुए हैं। इसी तरह उप प्रमुख पद पर जसपा की रेणु कुमारी शाह निर्वाचित हुई हैं। उन्हें 5,154 मत प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु की विजयनगर गांव पालिका के अध्यक्ष पद के लिए नेकपा एमाले के गोपाल थापा निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मी कुमारी थारू निर्वाचित हुई हैं। रौतहट की माधव नारायण नगर पालिका के प्रमुख पद के लिए नेपाली कांग्रेस के बैजनाथ प्रसाद यादव निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह उप प्रमुख पद पर जनता समाजवादी पार्टी की निर्मला देवी रमन निर्वाचित हुई हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने 5 दलीय सत्ता गठबंधन को सफल बताया है। भक्तपुर की मध्यपुर ठीमी नगरपालिका में गठबंधन की ओर से विजय हुए उम्मीदवारों को प्रचंड निवास कुमार टार में बधाई देते हुए कहा कि गठबंधन ने देश की राजनीति में परिवर्तन यथा स्थायित्व और विकास की नई यात्रा की शुरुआत की है। आज शाम मकवानपुर में हुए सवारी दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य 4 घायल हुए हैं। वीरगंज से काठमांडू की ओर आ रही पिकअप डीआई गाड़ी मकवानपुर की इंद्र सरोवर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 कुलेखानी डैम के सामने रहे सीमखोला पुल में दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 घायल हुए हैं। मृतकों की शिनाख्त होनी बाकी है, जबकि घायलों में से 3 लोगों का इलाज हिटौड़ा में और अन्य 1 का इलाज काठमांडू में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने हालिया चर्चित महिला से हिंसा संबंधी वीडियो के बारे में छानबीन कर रही समिति को सहयोग करने का सभी से अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरियाल द्वारा जारी किए गए बयान में ऐसा अनुरोध किया गया है। बयान में साफ किया गया है कि इस मामले की छानबीन करके जल्द ही दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। बयान में यह भी कहा गया है कि एसएसपी वसंत बहादुर कुंवर के संयोजकत्व में गठित छानबीन समिति ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। साथ ही बयान में इस बात का भी जिक्र है कि वीडियो को लेकर बीते गुरुवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों द्वारा मांग किए जाने और सभामुख के रूलिंग करने के साथ ही नागरिक समाज द्वारा दोषी पर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन और दबाव के संबंध में गृह मंत्रालय का गंभीर ध्यानाकर्षण हो चुका है। काठमांडू घाटी के ज्यादातर बड़े अस्पताल रविवार को भी संचालित रहेंगे। 2 दिन छुट्टी देने के सरकार के निर्णय क्रियान्वयन के बावजूद मरीजों को इलाज में होने वाली समस्या के जिक्र के साथ ये अस्पताल रविवार को संचालित किए जाएंगे। उन अस्पतालों में त्रिवेश शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कांति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल, शहीद गंगालाल हृदय रोग केंद्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल लगायत बड़े बड़े अस्पतालों ने रविवार को भी अस्पताल संचालन करने का फैसला लिया है। संसार में नेपाल की पहचान योग और जड़ी बूटी के देश के रूप में कराने की आवश्यकता पर विज्ञों ने जोर दिया है। आज योग गुरु आचार्य राजन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक योग दर्शन रब प्राचीन चिकित्सा और की टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने योग और प्राचीन चिकित्सा के माध्यम से नेपाल को विश्व में परिचित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉनसून से पहले भारत के कुछ राज्यों में आंधी और बारिश के साथ साथ आई बाढ़ और बिजली की चपेट में आने से 57 लोगों की मौत हो गई है। बिहार, असम और कर्नाटक तीन ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई है। बिहार में शुक्रवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में जल भराव से हुए हादसों के कारण 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एहतियातन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में आई बाढ़ से गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट हो चुकी हैं। असम में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हैं। यहां अब तक 15 लोगों की जान चली गई है जबकि सबसे ज्यादा 33 मौतें बिहार में बिजली गिरने से हुई हैं। वहीं कर्नाटक में भी 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं खराब मौसम की वजह से दिल्ली की 10 फ्लाइट्स अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करानी पड़ी। भारतीय राज्य गुजरात में मोड़ासा जिले के आलमपुर गांव के पास आज सुबह हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां 2 ट्रक और 1 कार के बीच एक्सीडेंट हो गया जिससे तीनों वाहनों में आग लग गई। घटना में तीनों वाहनों के अंदर 6 लोग फंसे रह गए और जिंदा जल गए। वाहनों में लगी आग को काफी देर तक बुझाया नहीं जा सका था। सूचना के अनुसार एक ट्रक का क्लीनर, दूसरे ट्रक का ड्राइवर व क्लीनर व कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं कार ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने कामयाब हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हुई और इनकी चपेट में एक कार भी आ गई। एक ट्रक में केमिकल भरा था जिसके चलते तीनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। स्थानीय चुनाव अंतर्गत जारी मतगणना में अब तक 695 पालिकाओं का मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 307, नेकपा एमाले 188 और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 120 स्थानों पर विजयी। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड ने 5 दलीय सत्ता गठबंधन को बताया सफल। मकवानपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 अन्य हुए घायल। और मॉनसून से पहले भारत के कुछ राज्यों में आंधी और बारिश के साथ साथ आई बाढ़ और बिजली की चपेट में आने से 57 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।